यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौरा हरिबोल 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 नित्य गौरा हरिबोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्टवाइन ग्रह सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ये यहाँ रखना चाहिए चेयर पे, नहीं तो माता जी लोग को नहीं दिखेगा। उधर थोड़ा साइड में, डिटेल्स के सामने थोड़ा सा साइड में। हिंदी में ना? क्लास इन हिंदी, परपोर्ट ट्रांसलेशन, परपोर्ट इस लैंग्वेज। नॉर्मली व्हाट डू यू डू? भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय। शिवजी के गाए हुए गीत का गान करना। चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा, ये अध्याय का शीर्षक है। श्लोक संख्या 11 है। सामुद्रीं देव देव उक्तां उपयेमे शतद्रुतिं याम वीक्ष्य चारु सर्व वही है ना, अंगीम किशोरीम सुष्ठु अलंकृताम परिक्रमंतीम उद्वाहे चकमे अग्निहे शुकीम इव सामुद्रीं देव देवोक्ताम उपयेमे शतद्रुतिम याम वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठुलंकृतां परिक्रमांतीं उद्वाहे चकमेघ्निः शुकीं इव सामुद्रीं देवदेवोक्तां उपयेमे शतद्रुतिम् याम वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठुलंकृतां परिक्रमंतीं उद्वाहे चकमेघ्निः शुकीं इव सामुद्रीं देवदेवोक्तां उपयेमे शतद्रुतिम् याम वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं किशोरीं सुष्ठुलंकृतां परिक्रमंतीं उद्वाहे चकमेघ्निः शुकीं इव बोलेंगे कोई परम देवता ब्रह्मा जी ने महाराज बर्हिषत, जिनको प्राचीन बर्ही भी कहा जाता है, आदेश दिया कि वो समुद्र की पुत्री जिनका नाम शतद्रुति था उनसे विवाह करे। शतद्रुति का शारीरिक सौंदर्य था और वो बहुत तरुणी थी, अच्छे अच्छे वस्त्रों के द्वारा अलंकृत थी। और जब वो विवाह स्थान में आई और प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव भी आकर्षित हो गए और उसका संग प्राप्त करने के लिए इच्छा करने लगे, जैसे कि पहले उन्होंने शुकी का संग प्राप्त करने की इच्छा की थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुष्ठ अलंकृतम शब्द महत्वपूर्ण है। वैदिक पद्धति के अनुसार जब कोई किसी लड़की का विवाह होता है तो बहुत अच्छे ढंग से उसे महंगे साड़ी और आभूषण आदि से अलंकृत किया जाता है और फिर वो प्रदक्षिणा करती है 7 बार वर के। उसके बाद वर और वधु एक साथ में रहते हैं और दोनों के बीच में आकर्षण होता है और वो बहुत स्थिर हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और जब विवाह के द्वारा उनका संबंध स्थापित किया जाता है तो वो आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से तीव्र आकर्षण के द्वारा जो वर है वो इच्छा करता है कि वो एक अच्छा घर बनाए और इस तरह से अपने आर्थिक विकास के लिए भी कोई अच्छी परिस्थिति स्थापित करे। फिर बच्चे आते हैं, फिर मित्र, फिर धन। इस तरह से भौतिक संसार में और भी ज्यादा वो लिप्त होने लगते हैं, वो बंध जाते हैं और सोचने लगते हैं ये मेरा है और मैं ये सब कर रहा हूं। इस तरह से दुनिया के भ्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और शुकीम शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समझा जाता है कि अग्निदेव भी शतद्रुति के सौंदर्य से आकर्षित हो गए, जबकि वो प्राचीन बरही की प्रदक्षिणा कर रही थी। जिस तरह से पहले वो सप्तर्षि के पत्नी शुकी से आकर्षित हो गए थे, तो यहाँ इस भौतिक जगत में ये काम वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि कभी कभी जो देवतागण होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी, जो कि बहुत ऊंचे स्तर में स्थित होते हैं, वो इससे आकर्षित हो जाते हैं। ये भौतिक जगत इसी काम वासना पर आधारित है और इसी की वजह से हमें यहाँ भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़ता है और अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। और इसकी पुष्टि, इसका वर्णन अगले श्लोक में और किया गया है। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राजा बर्हिषत की कथा शुरू हो रही है। राजा बर्हिषत का और एक नाम था प्राचीन बर्हिषत, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए थे प्राचीन, इसलिए उनका नाम प्राचीन बर्हिषत भी हो गया। तो कभी बर्हिषत, कभी बर्ही, कभी प्राचीन बर्हिषत, ये भिन्न भिन्न नामों से उनको बुलाया जाता था। तो अभी वर्णन ये हो रहा है कि राजा बर्हिषत जो है वो बहुत एक पुण्यवान राजा थे। कर्मकांडीय यज्ञों में बहुत ध्यान देते थे और अष्टांग योग में भी वो बहुत निपुण थे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ दुनिया भर में किए और फिर उनका विवाह का समय हुआ तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि अभी आप विवाह करो समुद्र के पुत्री, प्लीज स्विच इट ऑफ, समुद्र की पुत्री शतद्रुति से। और उस समय जब शतद्रुति वहां पर विवाह स्थल में आई और अग्नि और वर का प्रदक्षिणा करने लगी तो उसका सौंदर्य इतना था कि अग्नि देव भी स्वयं उससे आकर्षित हो गए थे कि जैसे पहले सप्तर्षि की पत्नी शुकी से वो आकर्षित हुए थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ दो चीजों का वर्णन करते हैं, मूल रूप से एक ही, कि संसार में शारीरिक स्तर का जो आकर्षण है वो कितना तीव्र होता है। पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति, और ये बहुत तीव्र होने के कारण ये दोनों को संसार के बंधन में अटका के रखता है। तो जब ये आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये और आगे बढ़ के फिर घर चाहिए, फिर धन चाहिए, फिर बच्चे होते हैं, फिर रिश्तेदार होते हैं। इस तरह से जो भ्रम है, माया है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसे जनस्य मोहोयम अहम ममेति, जो मोह होता है, अहम और मम, मैं और मेरा, इन दोनों का जो भ्रम है ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। प्लीज कीप, यू शुड नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। तो ये मोह जो है ये बहुत तीव्र होता है और इसके कारण व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में अटक जाता है। इसलिए इस संसार को मैथुनागार कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही ये सारी दुनिया चल रही है। और इतना ही नहीं, साधारण मनुष्यों की बात, पशुओं की बात तो दूर रही, प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि यहां तक कि बड़े बड़े देवतागण भी, ब्रह्मा जी शिव जी तक इस आकर्षण से बंधे हुए हैं। जब भौतिक स्तर का आकर्षण इतना तीव्र रहता है तो इसके लिए कोई नियंत्रण की आवश्यकता होती है, नहीं तो मनुष्य बिना कोई नियंत्रण के इस आकर्षण का शिकार बन जाएगा तो फिर उत्पात हो जाएगा सारे समाज में। ये हमारे शारीरिक भावना को बढ़ाता है और हम तो शरीर नहीं हैं, और शारीरिक भावना या देह आत्म बुद्धि जिसको कहते हैं, इससे आगे हमें यदि बढ़ना है, इससे परे होना है, भगवान कृष्ण के धाम में हमें पहुंचना है उनकी शुद्ध भक्ति करके, तो इस आकर्षण को हमें पार करना है, इसके बिना संभव नहीं होगा। तो जब इस आकर्षण को पार हम करने के लिए प्रयास करते हैं अपने आप में, तो ये संभव नहीं होता है। रसवर्धम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम कृष्ण भक्ति के ऊंचे रस को प्राप्त करते हैं, तभी ये निम्न श्रेणी का जो भौतिक रस है इसको हम भूल जाते हैं। The only way to come out of the material attractions of this world is to develop higher attraction for Krishna consciousness. There is no other way. And Krishna is all attractive. Bhagwan sarva akarshak hai. इसलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये संसार के जितने भी आकर्षण हैं, यहां तक कि ये शारीरिक आसक्ति और काम वासनाएं, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। तो सारा जो हमारे सामने चुनौती है या हमारे सामने जो एक मुद्दा है वो ये है कि कृष्ण के प्रति हम कैसे अपने आकर्षण को बढ़ाएं। द ओनली वे टू कॉम्बैट attachment to material enjoyment and material things in this world is to develop our attraction for Krishna. तो कृष्ण के प्रति कैसे हम आकर्षित हो जाएं, ये हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन की सफलता इसी में है। The whole success of life depends on how successful we are in becoming attracted to Krishna. यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवनवरस धामन उद्यते रंतुमासीत। यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मेरा मन, मेरा चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो गया, तो तब से हर क्षण मुझे नए नए रसों का आस्वादन करने का अवसर मिल रहा है। So this is a very important point. Yamunacharya prays that ever since my mind has been placed at the lotus feet of Lord Krishna, I am experiencing newer and newer tastes. Aur phir wo kehte hain, tadavadhi nari sangame, whenever I think of all this material enjoyment, then immediately mukha sushtu vikara. My whole mind, my mind becomes repelled by the thought, and then my lips curl in distaste. ऐसे यमुनाचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण के प्रति आकर्षण हृदय में जागृत हो जाता है, कृष्ण भक्ति के नए नए रस आने लगते हैं, तो उस समय एक एक करके सारे जितने भी भौतिक आसक्तियां हैं वो खत्म होने लगती है। इस तरह से भगवान कृष्ण के प्रति हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न करना ही एकमात्र उपाय है। तो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण हम कैसे जागृत कर सकते हैं? सर्वप्रथम उनके भक्तों के संग में आके बार बार भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान के भक्तों के बीच में आके भगवान की कथाओं का श्रवण करना, सुनना, ये सबसे जरूरी बात है। यदि भगवान के प्रति हम आकर्षित होना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, और सेवा प्रारंभ होती है श्रवण और कीर्तन से। यहां जब विवाह की बात आती है, तो प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि पुराने जमाने में जब वर और वधु एक दूसरे से विवाह करते थे, तो पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन विवाह के बाद एक दूसरे की सेवा करके फिर दोनों के बीच में एक प्रेम का संबंध स्थापित होता था। पहले प्रेम नहीं था, सेवा के द्वारा प्रेम उत्पन्न हो जाता था। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति सेवा करने से वो प्रेम आकर्षण इत्यादि उत्पन्न हो जाएगा। तो सेवा से प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो सेवा बढ़ते रहता है। आजकल के जमाने में क्या होता है कि लोग इस तरह के विवाह को पसंद नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें और फिर जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी करें, ऐसा ही करते हैं ना। पहले प्रेम होना चाहिए, फिर प्रेम करने के बाद जिसको प्रेम करते हैं उससे शादी करें। लेकिन वैदिक पद्धति में ऐसा नहीं था। वैदिक पद्धति में क्या था, जिससे हम शादी करेंगे उससे प्रेम करें। आप समझ रहे हैं, यू हैव गॉट दिस पॉइंट। इन टुडेज वर्ल्ड पीपल मैरी हु दे लव, बट इन द वैदिक टाइम्स पीपल लव्ड हुम दे मैरिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आजकल सेवा के लिए इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन सेवा करके पहले के जमाने में शादी होती थी, विवाह होता था, और विवाह होने के बाद हालांकि पहचान नहीं थी पहले से, तो सेवा करते थे एक दूसरे की। ऐसे सेवा करके फिर वो प्रेम उत्पन्न हो जाता था। लेकिन आजकल सेवा करने का समय किसको है, तो इसलिए डायरेक्ट सीधा प्रेम चाहिए। पहले प्रेम चाहिए और उसके बाद फिर विवाह आदि होगा, और फिर वो प्रेम तो टिकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम तो केवल शारीरिक आकर्षण पे स्थित है, इसलिए फिर वो टूट जाता है, फिर तलाक आदि सब हो जाता है। तो जब लोगों के बीच में संबंध शारीरिक आकर्षण पे होता है, स्थित होता है, तो वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, ज्यादा समय के लिए वो रह नहीं सकता है। पुराने जमाने में विवाह केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं होता था, एक कर्तव्य के ऊपर आधारित होता था, एक सभ्यता संस्कृति के ऊपर आधारित होता था। टुडे ऑल रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, बट इन द वैदिक टाइम्स रिलेशनशिप्स वर बेस्ड अपॉन अ सेंस ऑफ ड्यूटी, अ सेंस ऑफ सर्विस, अ सेंस ऑफ कल्चर, एंड देयरफॉर द रिलेशनशिप्स वर लॉन्ग लास्टिंग। और इसलिए जो संबंध हुआ करते थे वो समय तक रहते थे। अभी कितने सारे पुराने जमाने के विवाह है, 50 साल का विवाह हो गया फिर भी सुखी है एक दूसरे के साथ में। तो एक सज्जन हमको बता रहे थे कि उनके अभी विवाह का 50 साल समाप्त हो गया है, और जब उनका विवाह हुआ था तो विवाह के समय जब अग्नि में आहुति डाली जा रही थी, उस समय उन्होंने अपने पत्नी को पहली बार देखा, और पत्नी ने भी उनको पहली बार देखा। फर्स्ट टाइम दे सॉ ईच अदर वॉज एट द मैरिज सेरेमनी व्हेन द यज्ञ वॉज गोइंग ऑन। एट दैट टाइम द वेल वॉज लिफ्टेड एंड ही सॉ दिस इज द पर्सन आई एम मैरिंग, एंड शी ऑल्सो सॉ हिम फर्स्ट टाइम। दे ओनली डिपेंडेड ऑन एल्डर्स चॉइस, बड़ों ने ऐसे ऐसे निर्धारित किया है, करो शादी। और अब बोले 50 साल कोई समस्या नहीं, हम खुशी है शादी में। अब 50th एनिवर्सरी, 50वां सालगिरह विवाह का मना रहे। ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन आजकल के जमाने में जब कर्तव्य के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर नहीं, किसी ऊंचे उद्देश्य के प्राप्ति के लिए नहीं, केवल अपने तथा कथित प्रेम और शारीरिक आकर्षण के आधार पर विवाह किया जाता है, तो ये प्रेम भी ज्यादा देर टिकता नहीं है। फिर किसी दूसरे से आकर्षण हो जाता है, या ये आकर्षण में कुछ खोखलापन दिखाई देता है, फिर उस आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं तो संबंध टूट जाता है। तो ये आधुनिक जमाने की विडंबना है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे चीजें ज्यादा स्थूल ग्रॉस होती जा रही है। अपने कर्तव्यों से हम दूर हटते जा रहे हैं, अपने अधिकार पे ज्यादा हम जोर देना जा रहे हैं। So as Kali Yuga progresses, things are becoming more gross and people are giving more importance to their rights than to their duties. So they are demanding more things and not willing to sacrifice themselves for others. They have so many expectations. Kitni aashaye hai, humko ye chahiye, patni se bhi ye chahiye, pati se bhi ye chahiye, parivar se ye chahiye, samaj se ye chahiye. Hum aasha karte hain, apeksha karte hain ki humko itna sab milna chahiye. Lekin hume dusron ko dena kitna chahiye, uske bare mein nahi sochte hain. To jab hamare hriday mein lene ki pravritti jyada hoti hai aur dene ki pravritti bahut kam hoti hai, to phir samasya ho jati hai, phir sambandh toot jate hain, nirasha hoti hai, hatash ho jate hain, frustration ho jata hai jeevan mein. Isliye aajkal sambandhon mein itni samasya hai. Today, why are there so many more quarrels? Why people are not able to get along with each other? This is one very important reason. Bodily consciousness and expecting more than you are willing to give. Hum jitna aasha, jitna apeksha karte hain, usse kam hum dena chahte hain. Yadi har ek vyakti soche ki mujhe jyada dena chahiye aur lena kam chahiye, to kitna achha ho jayega. You are getting this point? If everybody thinks I should give more than I should receive, then there will be no problem in the society. But people are giving today more to others, but they're giving trouble to others. That's all. Dusron ko kasht de rahe hai. To is tarah se jab bhavna hi sambandhon ka jo ek aadhar hai, buniyad hai, foundation hai, wo hi galat hai, to phir ye sambandh kaise tik sakte hain? When the very foundation on which relationships are based in this world is false, how can the relationship survive properly? So therefore, it is very important that we revive spiritual culture, the Vedic culture in the society. But even that culture cannot be based on some sentiment. Kevala koi bhavana ke upar is sanskriti ko aadharit nahi kiya ja sakta hai. इसको दर्शन या फिलॉसफी के ऊपर आधारित होना चाहिए, किसी श्रेष्ठ सिद्धांत के ऊपर आधारित होना चाहिए. फॉर दैट स्पिरिचुअल और वैदिक कल्चर टू बी एस्टैब्लिश्ड, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम हायर प्रिंसिपल, ऑन सम हायर फिलॉसफी. एंड दैट हाईएस्ट फिलॉसफी इज टू एक्वायर द हाईएस्ट टेस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो कृष्ण के प्रति, जो कि परम सत्य है, कैसे आकर्षण सबके हृदय में स्थापित किया जाए, ये मुद्दा है. सो इफ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ वेरी हैप्पी सोसाइटी, देन वी हैव टू ट्राई टू इंश्योर दैट एवरीबडी इन द वर्ल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. इफ दैट इज डन, देन एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा. राम बाण उपाय, दिस इज द रियल एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. वी शुड सिंपली बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा, देन ऑल द अदर प्रॉब्लम्स वी आर एक्सपीरियंसिंग विल गो. क्योंकि जितने भी समस्याएं हैं वो कहां पे होती हैं? ऑल द प्रॉब्लम्स, वेयर डू दे एग्जिस्ट? Where do the problems exist? In the mind, correct? Jitne bhi samasya hai, wo kahan nivas karte hain? Man mein nivas karte. Bahari cheezon mein nivas nahi karte. Jaise do vyakti hain, ek hi paristhiti mein hain, koi samasya hoti hai, ek bahut vichlit ho jata hai, dusra shant rehta hai. Kyun? बाहरी समस्या दोनों के लिए एक जैसे है, परंतु दोनों की वृत्ति अलग है, मानसिकता अलग है. इसलिए समस्या मन में है. सो द प्रॉब्लम इज इन द माइंड. So if our mind becomes attracted to Krishna, mama chetah Krishna padaravinde. So if that chitta becomes, we make it attracted to Krishna, then all problems will be solved. This is the real solution. Ye sahi samasya ka hal hai. इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना ही सबसे ऊंचा सर्वोपकारी कल्याण कार्य है. इट इज द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क बिकॉज बाय एनेबलिंग पीपल टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा वी आर हेल्पिंग देम टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ परमानेंटली. क्योंकि लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण प्रदान करने से समस्त समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं. दिस इज द होल फॉर्मूला और ये हमारे कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है. तो इस आकर्षण को जागृत करने के लिए भक्तों के संघ में आना बहुत आवश्यक है. भक्तों के संघ में आके श्रवण करना, कृष्ण कथा सुनना, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे शास्त्रों के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू गेट अट्रैक्शन टू कृष्णा इज टू गेट अट्रैक्टेड टू हिज कथा, टू हियर अबाउट हिम एंड हिज मैसेजेस इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज. आजकल हम देखते हैं कि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत आतुर होते हैं. जो भले पक्के भक्त नहीं है, थोड़ी बहुत उनको भावना है, फिर भी वो सोचते भगवान का दर्शन होना चाहिए. लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए इतना आतुर नहीं होते हैं. Those who are genuine devotees, practicing sincere devotees, who know the philosophy, are not so keen to prematurely have darshan of the Lord. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur kaha karte the ki Krishna ko dekhne ke liye itna atur na hona. Krishna ki itni achhi seva karo ki Krishna tumhe dekhne ke liye atur ho jayenge. Don't be so eager to see Krishna. You serve Krishna so nicely that Krishna will be eager to see you. So service to Krishna is the real thing. Just simply seeing Krishna, suppose Krishna were to appear before us, is not something very wonderful unless we have devotion in the heart. If we do not have devotion in the heart, even if Krishna appears in front of us, what is the use? Duryodhan also saw Krishna face to face. Shishupal saw Krishna face to face. Hiranyaksha, Hiranyakashipu, they saw Narsingadev and Varahadev in front of them. So many demons saw Krishna and Ram and so on. But what was the benefit? Did it develop love in their hearts for them? No. Aise kitne bade bade asur hue hai जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, आमने सामने दर्शन किया, प्रत्यक्ष दर्शन किया, लेकिन क्या लाभ हुआ? क्या उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ? बल्कि भगवान के प्रति घृणा, द्वेष बढ़ गया. इनफैक्ट व्हेन दीज डीमन्स सॉ द लॉर्ड, देयर एनवी एंड हेट्रेड इंक्रीज्ड. सो देयरफॉर द आचार्यज एक्सप्लेन, what is the use of prematurely, without devotion in the heart, wanting to see the Lord? That is not very beneficial. So rather, we should, by the process of devotional service, try to develop attraction and love for Krishna. And then when we are ready, Krishna will reveal himself to us and we will be able to see him. Isliye hamare acharyon ne hame updesh diya hai ki itni achhi tarah se seva karo, साधन भक्ति करो, जिससे कि धीरे धीरे से भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ेगा. और जब वो प्रेम बढ़ेगा तो श्री कृष्ण अपने आप को भक्तों के सामने प्रकट करेंगे, स्वयं दर्शन देंगे। तो आकर्षित होने के लिए सेवा कानों से और जीभ से शुरू होता है। सो वी हैव सीन दैट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स एंड आवर मटेरियल अटैचमेंट्स इज टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। वी कैन बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा बाय डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद द ईयर्स एंड द टंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। So when we come to the association of devotees and hear about Krishna, then we will chant about Krishna. Even more important than chanting is hearing, because without hearing, we will not have the enthusiasm and the inclination to chant. तो कीर्तन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण श्रवण है, क्योंकि हम श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन करने के लिए जो सद्बुद्धि चाहिए, जो उत्साह चाहिए, प्रेरणा चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो हम जब श्रवण करेंगे भक्तों के संग में, तो अपने आप कीर्तन करने का उत्साह आ जाएगा, जप करने का, कीर्तन करने का, कथा करने का उत्साह अपने आप आ जाएगा। और इतना ही नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण भी अपने आप आ जाएगा। And not only that, then the attraction to Krishna will also automatically come. There are some instances, famous instances, examples in the Srimad Bhagavatam of great devotees who became pure devotees without even seeing Krishna once physically. ऐसे श्रीमद् भागवतम में कई उदाहरण हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि शुद्ध भक्त, कोई लोग शुद्ध भक्त बने केवल श्रवण करके, बिना श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखे हुए। और जब उनके हृदय में श्रवण के द्वारा शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो गया, तब अपने आप कृष्ण ने उनके सामने आके दर्शन दिया। So by the process of hearing about Krishna in the association of devotees, when they heard, they developed attraction and love for Krishna. And in that stage of pure devotion, then Krishna himself revealed his beautiful form to them. Any examples? आप बताइए कौन से उदाहरण हैं ऐसे? रुक्मिणी देवी, बहुत अच्छा। रुक्मिणी देवी के पिता थे, कौन था उनका पिता? Who was father of Rukmi? रुक्मिणी देवी। राजा भीष्मक। और रुक्मिणी देवी के भाई का नाम क्या था? रुक्मी। तो राजा भीष्मक के दरबार में अक्सर बड़े बड़े साधु आया करते थे, और वो साधु भगवान कृष्ण की कथा करते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे। सो इन किंग भीष्मक्स कोर्ट मेनी साधुज यूज्ड टू कम एंड दे वुड बी ग्लोरिफाइंग कृष्णा। सो दिस यंग प्रिंसेस, ये राजकुमारी, कभी कभी दरबार में बैठती थी और ये सब सुनती थी। शी वुड हियर ऑल दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा फ्रॉम द सेजेस। और ये सुन सुन के उसके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, और इतना आकर्षण उत्पन्न हुआ कि उसने सोचा कि मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से विवाह नहीं करूंगी। एंड दैट अट्रैक्शन बिकेम सो स्ट्रॉन्ग, शी डिसाइडेड नोबडी अदर देन कृष्णा आई विल मैरी। And eventually, of course, you know the story. Then she sent a message to Lord Krishna through one Brahmana that my father and brother are arranging my marriage to Shishupal, but I do not wish to get married to him. So please come and rescue me, and I wish to get married only to you. So Bhagavan Krishna, then Krishna came himself. So Rukmini Devi ko chitti ko prapt karke, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां कौंडिन्यपुर में आए और कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी देवी का हरण करके ले गए और द्वारका में जाके रुक्मिणी देवी से विवाह कर लिया। सो रुक्मिणी देवी's example is very important for us because she was in the midst of sadhus, she heard about Krishna and she became his pure devotee. Very encouraging news for us. तो हमारे लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत घटना है क्योंकि हम भी भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना केवल उनकी कीर्तन के को श्रवण करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और हमारे साथ ये लाभ भी है कि भगवान का श्री विग्रह है हमारे पास जो कि कृष्ण से अभिन्न है। विग्रह में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। There is no difference between the deity and the Lord. In fact, one great devotee from the Sri Sampradaya, he has said, I don't want to go to Vaikuntha. He was looking at the deity of Ranganath. And he said, I don't want to go to Vaikuntha if in Vaikuntha you don't look like this. उन्होंने कहा विग्रह के सामने रंगनाथ के सामने खड़े होकर कहा कि वैकुंठ में भी आप ऐसे नहीं दिखते हो जैसे आप विग्रह में दिख रहे हो तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहूंगा। सो व्हेन वी गेट अट्रैक्टेड टू द डीटी इज डायरेक्टली कृष्णा, सो वी हैव दैट गुड फॉर्चून। रुक्मिणी देवी डिड नॉट हैव इवन दैट, शी डिड नॉट हैव द डीटी ऑफ कृष्णा ऑल्सो, शी ओनली हर्ड अबाउट कृष्णा। So just as the deity of Krishna is non-different from Krishna, the katha of Krishna is also the same as Krishna. Jis tarah se Bhagwan ke vigrah mein aur Krishna mein antar nahi hai, us tarah se Bhagwan Krishna aur Krishna mein bhi antar nahi hai, Bhagwan ki katha mein. It is said about Hanuman that when the talk came about going to the spiritual world, his first question was, Will there be Ram Katha there? If there's no Ram Katha, I don't want to go. Arre, you are going to spiritual world, doesn't matter. But if no Ram Katha, I don't want to go. तो हनुमान जी का जब बताया गया चलो अभी वैकुंठ जाने का समय आ गया तो हनुमान ने क्या पूछा, वहां कथा होगी राम की? नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो तो आध्यात्मिक जगत है। नहीं नहीं, राम कथा नहीं होगी तो नहीं जाऊंगा। So this goes to show that wherever there are discussions about Krishna, glorification of Krishna, chanting of Krishna's names, that is the best place to be in, and that is the best place we can develop our love for Krishna. उसी स्थान में हम भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, बार बार इकट्ठे आना चाहिए हमको, भले ज्यादा संख्या में न भी हो, दो भक्त, तीन भक्त, चार, पांच, जितने भी तैयार हैं, हमको आके मिलना चाहिए और साथ में कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन आदि हमको करना चाहिए। फिर कृष्ण के प्रति आकर्षण अपने आप हो जाएगा। फिर परम दृष्टवा निवर्तते, अपने आप में ऊंचा स्वाद जब मिलेगा तो निम्न श्रेणी के जो स्वाद हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी देवी के अलावा और कौन से प्रसिद्ध उदाहरण हैं? ध्रुव महाराज, ठीक है, ध्रुव महाराज ने श्रवण नहीं किया इतना। प्रह्लाद महाराज, हाँ, ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां मथुरा और वृंदावन के बीच में, ये दो प्रसिद्ध उदाहरण है। दीज आर टू वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज हु हैड नेवर सीन कृष्णा बट स्टिल बिकेम हिज प्योर डिवोटीज simply by hearing about Krishna. हाँ, वैसे तो कई है लेकिन भागवत की बात दो प्रसिद्ध उदाहरण, टू फेमस एग्जाम्पल्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम ऑफ ग्रेट डिवोटीज हु बिकेम ग्रेट डिवोटीज सिंपली बाय हियरिंग विदाउट सीइंग कृष्णा. इवन फॉर द वाइव्स ऑफ द याज्ञिक ब्राह्मणर्स देयर वर मेनी वेंडर्स फ्रॉम वृंदावन हु वुड कम selling flowers, selling fruits, selling this and that, and they would talk about Krishna, and these brahmanis would hear about Krishna from them, and just by that they became attracted to Krishna. So see how powerful is the process of Krishna katha. So we should have more and more Krishna katha amongst devotees, and when we are not in a position to come to the temple or to come in the association of devotees to hear, then we can read Srila Prabhupada's books, because then also we are associating with Srila Prabhupada, we are hearing from him, we are hearing from Shukadev Goswami, we can also hear lectures and songs and kirtans in the house on the tape. In this way we can keep association with Krishna and Krishna's pure devotees and develop love for him. And of course we should be chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna. Koi sawal hai? Koi prashna hai? Any questions? Okay. Granthraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.